नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए पकड़वाए गए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करें। आज हम अपने अध्ययन को 15 अध्याय के 37 पद से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पूर्व कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके वचन का अध्ययन करें। इस वक्त जब हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक के आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें समझ की समझता दें, ताकि प्रभु जो भी वचन हमें बताए जाते हैं हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। जो श्रोता भाई बहन निराश हैं, दुखी हैं, बीमारी हालत में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, चिंताओं में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उन्हें भी तसल्ली और धैर्य दें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पाप अपनी चरम सीमा पर था और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस का दृश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। यीशु को प्यास लगी और उसने धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए सिरका पिया। मित्रों, आइए अब हम मरकुस 15 उसके 37 और 38 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। मित्रों, शारीरिक निष्क्रियता के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसने अपनी आत्मा त्याग दी थी। 3 बजे का समय सायंकालीन बलिदान का समय होता था, याजक उस समय मंदिर में होता था, अतः मंदिर के पर्दे के फटने के वे गवाह थे। यही कारण है कि अनेक याजक मसीह में विश्वास लाए थे। मित्रों, परमेश्वर का वचन फैलाया गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वालों में से हो गया। हम प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के 7 पद में इसे पढ़ते हैं। अतः हमें यह भी मानने में संकोच नहीं करना है कि पर्दा फटने के समय ये याजक मंदिर में सेवारत थे। यीशु का प्राण त्याग और पर्दा फटना सुसंगत घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं नहीं। मित्रों, यीशु की मृत्यु और एक साधारण मनुष्य की मृत्यु में अंतर है। मनुष्य जब मरता है तब उसकी सांस उसके भीतर प्रवेश करती है, अर्थात वह लंबी सांस लेकर दम तोड़ता है। मैंने स्वयं यह देखा है कि यीशु ने अपनी आत्मा त्याग दी थी, अन्यथा उसकी मृत्यु असंभव थी। इस प्रकार उसकी मृत्यु हमसे भिन्न है। ठीक उसी समय मंदिर का पर्दा फटकर दो भाग हो गया था। मंदिर का पर्दा यीशु के मनुष्यत्व का संकेत है। लय व्यवस्था में हमें इसका पूर्ण विवरण मिलता है, जिसमें एक संदेश है, पर्दा मनुष्य को परमेश्वर से अलग रखता था। यीशु की मृत्यु ने पर्दा फाड़ दिया, अर्थात हमें परमेश्वर के समक्ष उपस्थित कर दिया। मित्रों, उसकी मृत्यु हमारा परमेश्वर से मेल करवाती है, उसका जीवन नहीं। मरकुस 15 उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जो सुबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके विश्वास का अंगीकार था। इस समय वह अपने विश्वास को इससे अधिक प्रकट नहीं कर सकता था। उसने स्वीकार किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने स्वीकार किया कि यीशु कौन है और यह भी कि वह क्या कर रहा था। उस व्यक्ति ने कोई धर्म विज्ञान की पुस्तक के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ी थी, परंतु उसे इतना ज्ञात अवश्य था कि वह क्रूस के अधीन अपना स्थान ग्रहण करे। परमेश्वर किसी भी पापी से बस यही चाहता है कि वह चाहता है कि हम विश्वास में उसके पास आ जाएं। और सेना का एक सूबेदार ठीक यही कर रहा था। मित्रों, हम यह न भूलें कि वह अन्य जाति था, अर्थात वह रोमी था, और उसका उत्तरदायित्व था कि वह अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाने का निर्दयी काम करे। परंतु इस समय उसमें कोमलता उभारी गई। अब मार्कुस हमें उन स्त्रियों के नाम देता है जो वहां उपस्थित थीं। मार्कुस 15 उसके 40 और 41 पद में हम पढ़ते हैं, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब की और योशेस की माता मरियम और शलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बड़ी रोचक बात है कि क्रूस के नीचे अंतिम मानव स्त्रियां थी और कब्र पर पहुंचने वालों में भी स्त्रियां ही सर्वप्रथम थी। लिखा है कि वे दूर खड़ी थी, वे अंतिम समय तक निष्ठावान बनी रही। यीशु के शिष्य और अन्य अनुयायी इस समय उसे दूर तितर बितर हो गए थे। यहाँ कुछ स्त्रियां भी थी जिनका नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वह लिखता है और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तब हम मार्कुस 15 उसके 42 से 45 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सप्त के एक दिन पहले होता था, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था, वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सुबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए कुछ देर हुई। सो जब सुबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यीशु को दिला दी। मित्रों, यह ध्यान देने हेतु बड़ी रोचक बात है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ यीशु का अनुयायी था, जिसके बारे में अधिक चर्चा नहीं की गई है। यीशु के दफन का उत्तरदायित्व उसे सौंपा गया था, उसमें खुलकर सामने आने का साहस था, वह महासभा का सदस्य था। हम इसे लुकरची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 51 और 52 पद में पढ़ते हैं, परंतु वह महासभा की योजना और उनके कार्य में सहभागी नहीं था, वह परमेश्वर की राज्य की बाट जोहने वाला था। और अब शिष्य जा छिपे तो वह सामने आया और यीशु के लोथ को ले जाने की विनती की। मित्रों, लिखा है कि यीशु के मृत्यु का समाचार सुनकर पिलातुस को अचंभा हुआ, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया गया मनुष्य शीघ्र नहीं मरता था, कभी कभी तो वह कई दिन जीवित ही लटका रहता था। क्रूस पर मृत्यु बहुत विलंबित घटना होती थी, यह अत्यधिक निर्दयी और पार्श्विक उत्पीड़न होता था। यही कारण था कि पिलातुस ने विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मित्रों, क्रूस पर लटके अपराधी को शीघ्र मृत्यु प्रदान करने के लिए उसके पैर तोड़े जाते थे, परंतु यीशु पहले ही अपनी आत्मा त्याग चुका था और उसके पैर तोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी कि उसकी देह में एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। मित्रों, इस भाग में लोथ के लिए दो भिन्न शब्दों का उपयोग किया गया है। यूसुफ ने हियाब करके पिलातुस से यीशु का शव मांगा। यहां शव के लिए यूनानी शब्द सोमा का काम में लिया गया है। पिलातुस ने शव यूसुफ को दिला दिया। यहां शव के लिए यूनानी शब्द टोमा शब्द काम में लिया गया है। मित्रों, सोमा शब्द का अर्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व, जिसमें देखरेख और कोमलता विहित है। दूसरा शब्द पटोमा का अर्थ है लोथ। यूसुफ द्वारा काम में लिया गया शब्द मृत्यु और मृतक के प्रति एक भिन्न दृष्टिकोण एवं मनोदशा व्यक्त करता है, जिसमें सहादृता भरी है। कहने का अर्थ है कि वह यीशु को ले जाना चाहता था। पिलातुस ने जो किया वह था कि उसने यीशु को लोथ ले जाने दी। देखिए कि वो कैसा अंतर है। मित्रों, केवल यीशु जीवन के मूल्य को उभार सकता है। आपका और मेरा मूल्य कुछ नहीं, परंतु यीशु ने हमारे लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया कि हम मुक्ति पाएं, अर्थात उद्धार पाएं। हम इस देह में कहरते हैं, परंतु एक दिन आएगा जब हमारी देह भी उद्धार पाएंगी। यह अंतर्दृष्टि यहां निहित है। यूसुफ धनवान व्यक्ति था और उसने यीशु को एक नई कब्र में रखा। मार्कुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 46 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोत को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मित्रों, रोमियो ने कब्र का द्वार चट्टान से बंद करके उस पर मुहर लगा दी और सैनिकों का पहरा वहां बैठाया गया, क्योंकि हम मत्तयी सुसमाचार 27 अध्याय उसके 66 पद में इसे पढ़ते हैं। तब हम मार्कुस 15 उसके 47 पद में आगे देखते हैं, और मरियम मगदलीनी और यसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहां रखा गया है। मित्रों, विलाप करने वालों में केवल महिलाएं थी, वे अंत तक उसके साथ थी। परमेश्वर स्त्री जाति को आशीष दे। मित्रों, यहाँ पर 15 अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 16 अध्याय से जारी रखेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण। यीशु का सहदेह पुनरुत्थान मसीही विश्वास का मूल सिद्धांत है। यह सुसमाचार का केंद्र है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में विहित प्रत्येक उपदेश उसके पुनरुत्थान पर आधारित है। आरंभिक कलीसिया इसी पर अवस्थित थी। आज भी कलीसियाओं में पुनरुत्थान पर विचार ही नहीं किया जाता है। केवल ईस्टर रविवार पर पुनरुत्थान का संदेश दिया जाता है कि वह जी उठा है। इस उत्साहवर्धक और जीवंत संदेश ने रोमी साम्राज्य की अचेत और पापी पीढ़ी को जीवंत बना दिया था। इससे उनमें महान परिवर्तन आ गया था और वे संसार को संदेश सुनाने निकल पड़े। मित्रों, यदि कलीसिया आज इस सत्य का प्रचार विश्वास के साथ करे तो आशा फूट निकलेगी। यह आलोचना का विषय है जिसे मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता हूँ। पद 9 से 20 में भी हम पढ़ते हैं। मित्रों, बाइबल विदों द्वारा आलोचना के अधीन रहे हैं। उनका कहना है कि ये पद मरकुस के लेख नहीं है, परंतु मेरे विचार में वे प्रेरित धर्मशास्त्र का ही अभिन्न अंग है और मरकुस के लेखन शैली का ही भाग है, संक्षिप्त और सीधा है। इस अध्याय की रूपरेखा हम इस प्रकार से देखते हैं। पहला, खाली कब्र पर स्त्रियों का आगमन, पद 1 से 4। दूसरा, यीशु के पुनरुत्थान की स्वर्गदूतों द्वारा घोषणा, पद 5 से 8। तीसरा, यीशु का दर्शन देना, पद 9 से 18। चौथा, यीशु का स्वर्गरोहण, पद 19 से 20। मित्रों, सप्ताह का प्रथम दिन अर्थात रविवार प्रातःकाल कब्र में रखने से पूर्व यीशु की देह का अभ्यंजन नहीं किया गया, अतः ये स्त्रियां सामग्री लेकर वहां आई। वैतनिया की मरियम का इत्र व्यर्थ नहीं गया था, परंतु इन स्त्रियों की सामग्री निश्चय ही व्यर्थ गई, क्योंकि यीशु वहां नहीं था, वह जीवित हो गया था। हम मरकुस 16 उसके 2 से 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। मित्रों, ये स्त्रियां वही थी जो क्रूस के अधीन खड़ी थी, अर्थात क्रूस के नीचे खड़ी थी। उन्होंने सप्त के अंत में अर्थात शनिवार संध्या समय उन्होंने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और रविवार तड़के वहां जा पहुंची। शिष्य तो यह सोच रहे थे कि यीशु तो मर गया है और उचित यही होगा कि वातावरण शांत हो जाने तक अर्थात खतरा टलने जाने तक छिपे रहो। क्या उन्होंने कब्र पर जाने की कामना की थी? इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अब इन स्त्रियों के सामने एक ही समस्या थी कि वे कब्र पर से उस भारी पत्थर को कैसे हटाएंगे। परंतु जब वे वहां पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पत्थर हटाया जा चुका था। वे प्रसन्न थी, परंतु यीशु भी वहां पर नहीं था। मित्रों, वहां स्वर्ग का संदेश वाहक था जिसने यीशु के पुनः जीवित होने का संदेश उन्हें सुनाया। कब्र के खाली होने का प्रमाण ऐसा ठोस था कि न्यायालय भी उसे स्वीकार करेगा। मार्कुस 16 उसके 5 से 7 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पत्रस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। मित्रों, खाली कब्र के तथ्यों को समझने के लिए हमें चारों सुसमाचारों को एक साथ रखना है। कुछ तथ्य मत्ती के सुसमाचार में है और कुछ यूहन्ना के सुसमाचार में। मैं यहाँ बर्तानिया के उच्च चांसलर लॉर्ड लिंडहर्स्ट 1846 का कथन संदर्भित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं इसका प्रमाण जानता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान का यह प्रमाण आज तक खंडित नहीं किया जा सका है। मित्रों, अब स्वर्गदूत इन स्त्रियों से विशेष करके कहता है कि वे जाकर शिष्यों को सुसमाचार दें। स्वर्गदूत निश्चय ही शिष्यों की प्रतीक्षा में नहीं था। उसने कहा कि वे शिष्यों से कह दे कि यीशु उनसे गलील में भेंट करेगा, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी। यूहन्ना 21 में इस भेंट का उल्लेख है। आप इन स्त्रियों के आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं, वे अवाक रह गई। अब यहाँ मेरी समझ में नहीं आता कि मरकुस अपने वृतांत का अंत कैसे कर सकता है, जैसा कि आलोचक कहते हैं। मरकुस 16 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, और वे निकल कर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। मित्रों, यह वह अंश है जो सब मूल लेखों में नहीं है, परंतु निश्चय ही परमेश्वर का वचन है। तब हम मरकुस 16 उसके 9 से 12 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। मित्रों, मरकुस स्पष्ट कर देता है कि उसने कालक्रम का अनुसरण नहीं किया है, परंतु यहाँ समय के क्रम में है। यीशु सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। शिष्यों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद वह आसपास के मार्ग में 2 शिष्यों को दिखाई दिया, जिसे लूका में हम पाते हैं। तब मरकुस 16 उसके 13 और 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। मरकुस यहाँ पूरा विवरण नहीं देता है, परंतु वह घटनाओं को क्रमवार प्रस्तुत करता है। मित्रों, हम मरकुस 16 उसके 15 पद में आगे पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मित्रों, यह गतिविधियों का सुसमाचार है। यीशु शिष्यों को क्रियाशील होने का आदेश देता है। वह हमें भी परमेश्वर के सक्रिय जन होने को कहता है। आज आप परमेश्वर के वचन के प्रचार हेतु क्या कर रहे हैं? मित्रों, यह हमारा उत्तरदायित्व है। परमेश्वर के वचन के प्रचार में आपकी भूमिका आवश्यक है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मरकुस 16 उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। मित्रों, वह यह नहीं कहता है कि मुक्ति के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है। वह कहता है कि मुक्ति पाने वाला बपतिस्मा लेगा। अनंत दंड का कारण वास्तव में यीशु का इनकार करना है। यूहन्ना 3 उसके 36 पद में लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आगे हम मरकुस 16 के 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ अति सतर्क रहने की आवश्यकता है कि लिखा क्या है। ये चिन्ह सुसमाचार प्रचार के बाद होते हैं, परंतु वे सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है, परंतु यदि आप उसे आज अनिवार्य समझें तो आपको विष पीने के लिए तैयार रहना है। पहली शताब्दी के अंत तक चिन्ह के वरदान प्रेरितों का प्रमाण पत्र नहीं रह गए थे। फर्क थी सही शिक्षा, जैसे कि यूहन्ना अपने दूसरे पत्र के पद 10 में लिखता है, आज का सबसे बड़ा चिन्ह परमेश्वर का वचन है। तब हम मार्कुस 16 उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मित्रों, प्रभु के स्वर्गवाहन और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर सेवा करने का यह मरकुस द्वारा दिया गया संक्षिप्त विवरण है। शिष्य निसंदेह निकल पड़े कि प्रत्येक मानव को सुसमाचार सुनाए, और प्रभु उनके साथ कार्य करता था और वचन को उनके आश्चर्य कर्मों द्वारा प्रमाणित करता था। यह सुसमाचार गतिविधियों से पूर्ण है। काश हम परमेश्वर के लिए गतिविधि से पूर्ण स्त्री और पुरुष बन जाते हैं। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए कितने दुख की बात है कि हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, परंतु उसके वचन का प्रचार नहीं करते हैं। आज इस वचन के प्रकाशन में मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। क्या हम उद्धार पाए हुए लोग हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या हम परमेश्वर का उद्धार का आनंद पा चुके हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम भी यह काम करें, अर्थात सुसमाचार उन लोगों को सुनाए जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मरा है। मित्रों, आज मुझे और आपको भी एक चुनौती लेने की आवश्यकता है। आज आपने वचन को सुना है, अपने मन और दिल को जांचें और देखें। यदि ऐसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसी कलीसिया से आप क्यों न जुड़े हों, लेकिन आज आप उसके पास आएं और प्रभु से सहायता मांगें ताकि आप उसके वचन को बांटने पाएं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और सामर्थ मांगें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। विनती करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन हमारे हृदयों में दे दें ताकि इस वचन को हम दूसरों तक पहुंचाने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे पापों के कारण मर गए, मृतकों में से फिर जी उठे और आज भी जीवित हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर देते हैं। और आप चाहते हैं कि हम आपके इस जीवित वचन को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वे भी उद्धार के आनंद को प्राप्त करें। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोता भाई बहनों के लिए। प्रभु, आप प्रत्येक को आप क्षमा करें, उनके जीवन में आप वास करें, उनके जीवन में आप शांति प्रदान करें ताकि वे आप में बलवंत किए जाएं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर खता, बख्शी गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए।
मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए।